एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई के मदद से तैयार किया गया है।
नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं याज्ञसी के उपन्यास ट्रांसेंडेंट किंगडम पर। ये एक ऐसी किताब है जो विज्ञान और आस्था यानी साइंस और फेथ के बीच की जो सदियों पुरानी बहस है उसे एक बहुत ही निजी और दिल को छू लेने वाली कहानी के जरिए देखती है।
हाँ, और याज्ञसी एक ऐसी लेखिका हैं, मतलब उनका जो पहला उपन्यास था होम गोइंग, उससे ही उन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली थी।
बिल्कुल, होम गोइंग एक बहुत बड़ी एक फैली हुई कहानी थी,
कई पीढ़ियों और महाद्वीपों तक जाती थी।
हाँ, लेकिन ट्रांसेंडेंट किंगडम ये बहुत अलग है।
बहुत अलग। ये कहानी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि एक परिवार के अंदर उतरती है, उनके मन और आत्मा की गहराइयों में।
सही, ये उपन्यास अप्रवासन, डिप्रेशन, नशे की लत, इन सबकी कहानी है जो सीधे दिल पर असर करती है।
बिल्कुल, एक परिवार के टूटने और फिर शायद जुड़ने की कोशिश की कहानी।
तो आज हमारी बातचीत का मकसद यही समझना होगा कि ये उपन्यास एक परिवार की कहानी के जरिए उन बड़े सवालों से कैसे जूझता है जिनसे हम सब कभी ना कभी टकराते हैं।
जैसे कि दुख का मतलब क्या है और हम इसका सामना कैसे करते हैं।
चलिए कहानी के केंद्र से शुरू करते हैं। इसकी मुख्य पात्र है गिफ्टी। कौन है वो और उसकी दुनिया कैसी है?
गिफ्टी वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस की एक बहुत होनहार PhD स्टूडेंट है।
अच्छा,
उसकी दुनिया उसकी लैब है, मतलब एक ठंडी, लॉजिकल, पूरी तरह से कंट्रोल्ड दुनिया
जहां हर चीज को नापा जा सकता है।
हाँ, वो चूहों पर प्रयोग करती है ये समझने के लिए कि दिमाग में इनाम पाने की चाह और डिप्रेशन का जो सर्किट होता है वो कैसे काम करता है।
एक ऐसी दुनिया जहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, कह सकते हैं?
हाँ, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जो उसकी इस कंट्रोल दुनिया को पूरी तरह से हिला देता है।
उसकी माँ?
हाँ बिल्कुल, उसकी माँ जो अलबामा में रहती है और गहरे डिप्रेशन से गुजर रही है, उसके पास कैलिफोर्निया रहने आ जाती है।
और ये वही माँ है जो कभी अपनी मजबूत धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती थी, है ना?
वही माँ जो हर बात में भगवान का शुक्र मनाती थी, पर अब वो बस एक परछाई बनकर रह गई है जो दिन रात बिस्तर पर खामोश पड़ी रहती है।
और उसकी यही खामोशी गिफ्टी को उन सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनसे वो भाग रही थी।
तो यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है।
एक तरफ गिफ्टी का वैज्ञानिक दिमाग है जो हर चीज का तार्किक जवाब चाहता है,
और दूसरी तरफ उसका बचपन है जो चर्च और बाइबल की कहानियों में बीता है।
ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव है।
उपन्यास इसे दो टाइमलाइन में दिखाता है।
अच्छा,
एक है आज का वक्त जिसमें गिफ्टी अपनी माँ की देखभाल कर रही है, और दूसरा है अतीत जो हमें उसके अलबामा के बचपन में ले जाता है।
और ये दोनों टाइमलाइन एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती हैं कि दुख को समझें तो कैसे समझें।
बिल्कुल, क्या डिप्रेशन और नशा सिर्फ दिमाग में कुछ केमिकल्स का असंतुलन है जैसा कि गिफी की साइंस उसे बताती है,
या फिर इसका ताल्लुक आत्मा, गुनाह और माफी जैसी चीजों से है जैसा कि उसके चर्च ने उसे सिखाया था?
तो एक तरह से वो अपने परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए एक यूनिफाइड थ्योरी ढूंढ रही है,
एक ऐसा जवाब जो विज्ञान और आस्था दोनों को संतुष्ट कर सके,
जो कि लगभग नामुमकिन सा लगता है।
तो उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जो उसे आज भी इतना परेशान करता है?
अतीत की कहानी हमें एक खुशहाल अप्रवासी परिवार से मिलवाती है।
घाना से आए हुए?
हाँ, घाना से आए माता पिता जो अमेरिका के अलाबामा में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, उन्हें वहाँ के एक चर्च में सहारा मिलता है।
और गिफी तब एक छोटी बच्ची है जिसे भगवान पर पूरा भरोसा है।
वो अपनी डायरी में भगवान को चिट्ठियां लिखती है, अपने सारे सवाल, अपनी सारी मासूमियत के साथ।
और इस परिवार का एक और बहुत अहम हिस्सा है, उसका बड़ा भाई नाना। वो परिवार की उम्मीदों का केंद्र था, है ना?
हाँ, नाना परिवार का गोल्डन चाइल्ड था, एक शानदार एथलीट, करिश्माई, सबका प्यारा।
उसे एक हाई जंपर की तरह बताया गया है,
जैसे वो दुनिया की मुश्किलों के ऊपर से छलांग लगा सकता है। वो परिवार के लिए अमेरिकी सपने के पूरे होने का प्रतीक था। लेकिन
कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस सपने को तोड़ देता है।
उसे खेल में चोट लगती है।
हाँ, बास्केटबॉल खेलते हुए।
जी, उसके टखने में चोट लगती है और डॉक्टर उसे दर्द के लिए ऑक्सीकॉन्टिन नाम की दवा देते हैं।
और उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दवा कितनी खतरनाक हो सकती है।
बिल्कुल नहीं, ये ओपियोइड संकट की बस शुरुआत थी, और ये एक छोटी सी घटना उस तबाही की शुरुआत करती है जिसकी परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी।
और परिवार ये समझ ही नहीं पाता कि उनके बेटे के साथ हो क्या रहा है।
वो उसे धीरे धीरे बदलते हुए देखते हैं, एक हंसते खेलते लड़के से एक चिड़चिड़े और बीमार इंसान में।
तो समाज और उनका चर्च इस पर कैसे रिएक्ट करता है? क्या वे इसे एक बीमारी की तरह देखते हैं?
नहीं, और यही इस कहानी की सबसे दुखद बात है। चर्च के लोग दुआ तो करते हैं, लेकिन वो नाना के संघर्ष को आस्था की कमजोरी या गुनाह की तरह देखते हैं, बीमारी की तरह नहीं।
मतलब एक नैतिक विफलता मानते हैं।
हाँ, एक दिमागी बीमारी नहीं। और ये कलंक परिवार को और भी अकेला कर देता है।
इसी बीच पिता भी परिवार को छोड़कर चले जाते हैं।
हाँ, अमेरिका में नस्लवाद और अपने सपने पूरे न कर पाने के दबाव में पिता, जिन्हें चिनचिन मैन कहा जाता है, वो घाना वापस चले जाते हैं।
और फिर वो होता है जो उस परिवार को हमेशा के लिए बिखेर देता है, नाना की मौत।
हाँ, 17 साल की उम्र में नाना की हेरोइन के ओवरडोज से मौत हो जाती है।
ये घटना गिफ्टी की आस्था की नींव हिला देती है।
उसका भगवान पे से भरोसा उठ जाता है। वो ये समझ नहीं पाती कि एक प्यार करने वाला भगवान उसके भाई को इतनी तकलीफ में कैसे देख सकता है।
और यहीं से वो जवाबों के लिए धर्म को छोड़कर विज्ञान की तरफ मुड़ जाती है।
सही, तो आज वो जो न्यूरोसाइंटिस्ट है वो सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं है।
नहीं, ये सीधे तौर पर अपने भाई की मौत का जवाब खोजने की एक कोशिश है।
वो समझना चाहती है कि उसके भाई के दिमाग में आखिर हुआ क्या था। उसकी पूरी जिंदगी उस एक घटना की प्रतिक्रिया है।
अब हम आज के वक्त में वापस आते हैं जहां गिफ्टी अपनी माँ की देखभाल कर रही है।
हाँ, और वो अपनी माँ के डिप्रेशन को भी एक वैज्ञानिक समस्या की तरह देखने की कोशिश करती है,
जैसे वो कोई रिसर्च सब्जेक्ट हो।
बिल्कुल, वो अपनी माँ के सोने जागने के घंटे, खाने पीने का हिसाब रखती है, जैसे उसकी माँ लैब का कोई चूहा हो। यह असल में उस भारी इमोशनल दर्द से खुद को बचाने का उसका तरीका है।
और उसकी लैब में जो प्रयोग चल रहे हैं उनका भी तो उसके परिवार की कहानी से गहरा नाता है ना।
बहुत गहरा। वो ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसमें रोशनी का इस्तेमाल करके दिमागी सर्किट को ऑन या ऑफ किया जा सकता है।
तो अपनी लैब में गिफ्टी एक बटन दबाकर नशे के आधी चूहे की तलब को रोक सकती है।
सोचिए, ये वही कंट्रोल है जो वो अपने भाई के लिए कभी हासिल नहीं कर सकी।
ये शक्ति और बेबसी का एक बहुत ही मार्मिक रोदाभास है।
वो लैब में भगवान की तरह काम कर सकती है, लेकिन असल जिंदगी में वो पूरी तरह बेबस थी।
किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी, विज्ञान को तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं है, लेकिन भगवान को है।
हाँ, ये लाइन उसके अंदर चल रहे द्वंद्व को कितनी खूबसूरती से दिखाती है।
यही उस उपन्यास का सार है। वो विज्ञान की ऑब्जेक्टिविटी में सुकून ढूंढना चाहती है, जहां भावनाओं का कोई काम नहीं।
लेकिन साथ ही उसे उस आध्यात्मिक सहारे की भी जरूरत है जो उसे बचपन में मिलता था। वो इन दोनों दुनियाओं के बीच बुरी तरह फंसी हुई है।
तो इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या है? क्या गिफ्टी को कोई बड़ा वैज्ञानिक या आध्यात्मिक जवाब मिल जाता है?
नहीं, और यही इस उपन्यास की खूबसूरती है।
कोई चमत्कार नहीं होता।
कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांत और कोमल पल है। महीनों की खामोशी के बाद एक दिन उसकी माँ बिस्तर से उठती है और कहती है, मुझे बाहर जाना है।
बस इतना ही?
बस इतना ही। यह कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह जिंदगी का एक संकेत है, अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण।
तो समाधान समस्या को सुलझाने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है।
एकदम सही। उसे एहसास होता है कि वो अपनी माँ या अपने भाई की याद को किसी साइंटिफिक इक्वेशन की तरह हल नहीं कर सकती।
और यहीं से उसका बदलना शुरू होता है।
वो फिर से अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है, लेकिन इस बार वो भगवान को नहीं, बल्कि एक अनजान अनिश्चित आप को संबोधित करती है।
ये आस्था और संदेह के बीच एक नई जमीन तलाशने जैसा है।
हाँ, वो ये समझने लगती है कि विज्ञान जो सवाल दिमाग के बारे में पूछता है और आस्था जो सवाल आत्मा के बारे में पूछती है, वो दोनों असल में एक ही रहस्य को समझने की कोशिशें हैं।
वो बस अलग अलग भाषाएं हैं जो एक ही सच को बताने की कोशिश कर रही हैं।
सही।
तो अगर हम इस उपन्यास के मुख्य विषयों को समेटे तो सबसे बड़ा सबक क्या है? एक तो यह है कि विज्ञान और आस्था दुश्मन नहीं है।
हाँ, वो दुनिया को समझने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं जो कभी कभी साथ भी चल सकते हैं।
और दूसरा बड़ा विषय है नशे की लत को एक नैतिक विफलता के बजाय एक बीमारी के रूप में देखना।
नाना की कहानी हमें सिखाती है कि इस बीमारी से जुड़े कलंक ने कितने परिवारों को तबाह किया है, और हमें इसके प्रति और ज्यादा हमदर्दी की जरूरत है।
और आखिर में ये दुख और सदमे की कहानी है। गिफ्टी को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, वो हमें उसके मन की गहराइयों में ले जाता है।
और कहानी का जो आगे पीछे जाना है वो ये दिखाता है कि अतीत कभी भी सच में बीतता नहीं है।
हमारी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे आज को एक शक्ल देती हैं।
इस किताब का अंतिम प्रभाव बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों के सामने विनम्र रहना मुमकिन है।
यह हमें याद दिलाता है कि इंसान के जटिल अनुभवों को समझने के लिए हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नजरियों की जरूरत पड़ती है, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और निजी।
और शायद सच्चा ज्ञान सारे जवाब ढूंढ लेने में नहीं बल्कि सवालों के साथ सुकून से जीना सीखने में है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।